ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षा और रोजगार तक आसान पहुंच प्रदान करके पिछड़े समुदायों को आगे लाने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करने के आरोप में नेपाल बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय द्वारा हेलो स्वास्थ्य सेवा की गई शुरू। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने सभी सीरियाई नागरिकों से शांति बनाए रखने और संवेदनशील समय से हिंसा से बचने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पिछड़े समुदायों को शिक्षा और रोजगार तक आसान पहुंच देकर आगे लाया जाएगा। आज झापा के गौरादह में ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि हमारे समाज की कला, संस्कृति और परम्परा के पुनरुद्वार पर ध्यान देना जरूरी है और इसके लिए ताजपुरिया समाज की मांगों पर सरकार ध्यान देगी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि छोटे उद्योगों का संचालन करके और रोजगार पैदा करके उद्यमियों को तैयार करने का माहौल सरकार बना रही है। इसी तरह आज झापा में दमक नगरपालिका 3 स्थित बेलडांगी जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि सरकार वर्ष 2030 तक सभी नेपालियों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश भर में बिजली, कृषि, संचार, उद्योग और स्वच्छता समेत अन्य अभियान चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा है कि चूंकि देश को अस्थिरता की ओर जाने से रोकने के लिए प्रमुख दलों के कार्यक्रम में पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा है कि सरकार एक घर एक धारा के नारे के अनुरूप सभी के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए हर स्तर पर समन्वय और सहयोग से काम कर रही है। 50,07,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बेलडांगी जल आपूर्ति परियोजना से दमक नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के 26,743 जनसंख्या लाभान्वित होंगे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नेपाल बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर किया है। गलत जानकारी देकर लाभ लेने के आरोप में सिलवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राधिकरण की चार्जशीट में बताया गया है कि सिलवाल ने बार बार नागरिकता में जन्मतिथि में संशोधन किया है और नागरिकता और पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को सहकारी रकम दुरुपयोग मामले में जांच के लिए आज शाम बीरगंज ले जाया गया है। परसा पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी किशोर लमसाल ने कहा है कि लामिछाने को आज पोखरा से काठमांडू के रास्ते बीरगंज ले जाया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। वन एवं पर्यावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा इस बात पर जोर दिया है कि वायु प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना और इसके नियंत्रण में कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है। आज काठमांडू में वायु प्रदूषण पर आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने में सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हेलो हेल्थ सेवा शुरू की है। मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी अधीनस्थ निकायों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतें टेलीफोन, व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल और पोस्ट के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि आज आप टेलीफोन नंबर 1115, वाइबर और व्हाट्सएप नंबर 9851330592 पर कॉल करके अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इसी तरह हेलो हेल्थ @mohp.gov.np पर ईमेल भेज सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 ऊपर के विचार विमर्श आज से शुरू हुआ है। विधेयक ऊपर के विचार विमर्श में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई ने कहा कि संविधान और संघीयता के मर्म अनुरूप शिक्षा विधेयक निर्माण किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने कहा है कि सीरिया में पिछले 14 वर्ष से जारी बर्बर युद्ध और लंबे तानाशाही शासन के पतन के बाद आम नागरिकों के पास एक स्थिरता भरे व शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर है। उन्होंने इस संवेदनशील क्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी सीरियाई नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाने की पुकार दोहराई है। रविवार तड़के विद्रोह लड़ाकों द्वारा राजधानी दस्मिक पर अपना नियंत्रण स्थापित किए जाने पर राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच यूएन महासचिव ने अपने वक्तव्य में यह बात कही है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में पश्चिमोत्तर सीरिया में सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम समेत अन्य हथियारबंद गुटों ने सीरियाई सरकार ने के नियंत्रण वाले अलेप्पो, होम्स, हमा शहर पर अचानक बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए और एक के बाद दूसरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। महासचिव गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि इस संवेदनशील समय में संयम बरतना होगा, हिंसा से बचा जाना होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा और रोजगार तक आसान पहुंच प्रदान करके पिछड़े समुदायों को आगे लाने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करने के आरोप में नेपाल बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय द्वारा हेलो स्वास्थ्य सेवा की गई शुरू। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने सभी सीरियाई नागरिकों से शांति बनाए रखने और संवेदनशील समय में हिंसा से बचने का किया आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।